सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम परमामि बद्धमानम तिथम धम्मस्य कर्तारम। ये प्रवचन सार परमागम आचार्य कुंद कुंद देव का विशिष्टतम ग्रंथ है। जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि का सार यह प्रवचन सार 2000 वर्ष से लगातार पठन पाठन की वस्तु बना हुआ है। यद्यपि समय सार को कुंद कुंद का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, फिर भी विश्वविद्यालयों के कोर्स में आज तक समय सार को स्थान प्राप्त नहीं हो सका, जबकि प्रवचन सार को सैकड़ों वर्ष से विश्वविद्यालय के कोर्स में रहने का सौभाग्य प्राप्त है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रतिपादन शैली है वो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के अनुकूल है। सारी दुनिया में जितने विश्वविद्यालय हैं उसमें जो दर्शन शास्त्र का अध्ययन अध्यापन होता है उसे दो भागों में बांटा जाता है, जिसे हम प्रमाण व्यवस्था और प्रमेय व्यवस्था कहते हैं। इस प्रवचन सार में भी पहले अध्याय में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और दूसरा अध्याय ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का होने से उसी प्रकार का वर्गीकरण है। इसकी वजह से विश्वविद्यालयों के कोर्स में इसे स्थान प्राप्त रहा है। सारी दुनिया को दो भागों में बांटकर देखना ये आधुनिक दर्शन शास्त्र का भी उद्देश्य है और जैन दर्शन के लिए तो ये सर्वाधिक अनुकूल है कि सारे जगत को दो भागों में बांटना। एक वो जानने वाला तत्व जिससे सारे जगत का ज्ञान होता है, जिसे हम ज्ञान तत्व कहते हैं, जिसे हम प्रमाण व्यवस्था कहते हैं, और दूसरा वह ज्ञेय तत्व जो उस ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। जो कुछ भी ज्ञान के द्वारा जाना जाता है उस सब का एक नाम यदि हम रखें वो भी ज्ञान की अपेक्षा, तो उसे हम ज्ञेय कहेंगे। प्रमाण की अपेक्षा उसका नाम रखा जाता है प्रमेय। प्रमेय माने क्षय द्रव्य, प्रमेय माने लोकालोक। जो कुछ भी जगत में है वह सब प्रमेय है, ज्ञेय है। तो सारे जगत को दो भागों में बांटकर देखने वाला यह ग्रंथादिराज आचार्य कुंद कुंद की प्रौढ़तम कृति है और इसे आचार्य जयसेन मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए कहते हैं। तो कहते हैं पंचाष्टिकाय मैंने आरंभ की रुचि वाले शिष्यों को बनाया है, प्राथमिक रुचि वाले शिष्यों के लिए बनाया है। ये प्रवचन सार मैंने मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए बनाया है। समय सार शुद्धात्मा का प्रतिपादक ग्रंथादि राज है। अष्टपाहुड़ में उनके प्रशासक रूप के दर्शन होते हैं और नियम सार वो कहते हैं मैंने अपनी भावना के लिए बनाया है, वो उनके दैनिक पाठ की चीज थी। इस तरह दार्शनों की दृष्टि में यदि प्रवचन सार सबसे ज्यादा आया तो वो स्वाभाविक ही है, क्योंकि जैन दर्शन की जो वस्तु व्यवस्था है, वस्तु का स्वरूप है, वस्तु कैसी है, इसका प्रतिपादन जिस बारीकी से इस प्रवचन सार ग्रंथादि राज में प्राप्त होता है वो कुंद कुंद के अन्य ग्रंथों में तो प्राप्त होता ही नहीं और सारे जिनागम में भी बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। वो जो गे तत्व है, जो जगत है, जिसको जानने की बात इस प्रवचन सार में बहुत गहराई से कही गई है, उसको जाना कैसे जाए, जानने का क्या उपाय है, उस सबको बोलते हैं प्रमाण। अथवा जैसे तत्वासूत्र में कहा ना प्रमाण नैरधि गमा, उसे हम प्रमाण शास्त्र बोलते हैं। प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु का स्वरूप जाना जाता है, क्योंकि नए जैन दर्शन के अलावा किसी भी दर्शन में नहीं है और प्रमाण प्रत्येक दर्शन में है। भारतीय दर्शन हो चाहे विदेशी दर्शन हो, उन सब में पाए जाते हैं। इसलिए उस व्यवस्था का नाम ही पड़ गया प्रमाण व्यवस्था। और जिसे हम न्याय शास्त्र कहते हैं वो सब प्रमाण व्यवस्था के ग्रंथ हैं। परीक्षा मुख, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तन, यहां तक कि हम कहें तो आपमीमांसा, अष्टश्री, अष्टसती, जितने भी न्याय के ग्रंथ हैं, न्याय के नाम पर जो ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं वो सब प्रमाण व्यवस्था के ग्रंथ हैं। वो सिर्फ इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि वस्तु को जानने वाला जो ज्ञान है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये वस्तु कैसे जानी जा सकती है, उसका उपाय क्या है, उसको बोलते हैं प्रमाण व्यवस्था। जिसको इस प्रवचन सार ग्रंथादि राज में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के नाम से जाना जाता है। इन्हें दो, सारी दुनिया को दो भागों में बांटा, इसलिए कुंदकुंद ने इस ग्रंथादि राज के भी दो विभाग किए, एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और एक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। एक पहले जानने वाले को जानो और जानने वाले ने क्या क्या जाना है उसको जानो, और जब ये दोनों बातें संपन्न हो जाएं, अपना राज महल बन के तैयार हो जाए, अपना मंदिर बन के तैयार हो जाए, तो उस पर शिखर बनाने के लिए उन्होंने चरणानि योग की चूलका बनाई। माने जो तत्व ज्ञान को हमने गहराई से जाना है, अब उसे हम अपने जीवन में कैसे उतारें, कैसे उतारा जाता है, इस बात को कहने के लिए उन्होंने दो अधिकारों के बाद एक चरणानि योग चूलिका नाम का अधिकार भी लिखा। वास्तव में जब हम चूलिका कहते हैं तो ग्रंथ का वैसा भाग नहीं होता है जैसा भाग उसके अध्याय हुआ करते हैं। वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नाम का महाधिकार, ज्ञेय तत्व नाम का प्रज्ञापन महाधिकार, अब फिर वो ये कहते हैं कि अभी और कुछ बातें कुछ बाकी रह गई हैं। वस्तु की व्यवस्था की बात तो हमने आपसे कर ली है, लेकिन जिन लोगों ने इस वस्तु की व्यवस्था के अनुसार अपना आचरण किया बनाया है, उनका आचरण कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, उस सारा वर्णन उन्होंने चरणानि योग चूलिका में किया है। चूलिका की परिभाषा आचार्य जयसेन स्वयं ये देते हैं, उक्त विषय का प्रतिपादन, अनुक्त विषय का प्रतिपादन, और उक्त और अनुक्त दोनों के मिले हुए रूप का प्रतिपादन जिसमें किया जाता है उसका नाम है चूलिका। कहने का अर्थ है कि इसमें किसी विषय का क्रमबद्ध प्रतिपादन नहीं होता है। वो बातें जो मूल वस्तु के प्रतिपादन में कहने से रह गई हैं उन्हें बोलते अनुक्त। उन बातों का वर्णन होता है। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि जो कह दी गई हैं फिर भी उन पर विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें द्वारा कहा जाता है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनको मिलाकर ही कथन किया जा सकता है। भले ही हम अनुक्त बात कहना चाहते हैं, लेकिन जो बात हमने अभी कह दी है उसके बिना उस अनुक्त बात को जो नहीं कही है उस बात को कहना संभव नहीं होता है, इसलिए उसे हम बोलते हैं उक्तानुक्त संकीर्ण व्याख्यान। एक उक्त व्याख्यान, एक अनुक्त व्याख्यान और एक उक्तानुक्त संकीर्ण व्याख्यान जिसमें किया जाता है उसे चूलिका कहते हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप विषय वस्तु के बाहर चले गए। तो इस तरह से एक उन्होंने तीसरा अधिकार बनाया है जिसे भी अपने मंदिर के ऊपर शिखर के रूप में स्वीकार करते हैं, वह चरणानि योग चूलिका। आचार्य जयसेन ने भी कुंदकुंद के ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं, और उन्होंने कुंदकुंद के तीन ग्रंथों पर जो टीकाएं लिखी, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय, उन तीनों ग्रंथों की टीकाओं का नाम तात्पर्य वृत्ति रखा। जबकि आचार्य अमृतचंद्र ने समय सार की टीका का नाम रखा आत्मख्याति, प्रवचन सार की टीका का नाम रखा तत्व प्रदीप का, और पंचास्तिकाय की टीका का नाम रखा समय व्याख्या। तो जो तात्पर्य वृत्ति नाम की आचार्य जयसेन की टीका है, उनने इन तीन अधिकारों के नाम सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शनाधिकार और सम्यक चारित्राधिकार इस प्रकार रखे हैं। और उन्होंने बहुत विस्तार से अपने इस अर्घा जो वर्गीकरण किया है अधिकारों का, उसका औचित्य भी बताने का प्रयास किया है। और पातनिका नाम से, महापातनिका, बीज बीज की पातनिकाओं के नाम से अब क्या कह दिया गया है, अब आगे क्या कहेंगे, ऐसे बार बार विषय वस्तु को स्पष्ट किया है। वे चरणानुयोग चूल का कहकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे हमने तीसरे अधिकार का जो महत्व है, जो सम्यक चारित्राधिकार नाम से जो महत्व से प्राप्त होता है, वो परिशिष्ट जैसी बात कहकर, चूल का जैसी बात कहकर ऐसा उसका महत्व थोड़ा कम होता है, ऐसा उनको लगता है। इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, इन तीनों अधिकार जो मुक्ति का मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनके नाम से इन अधिकारों का वर्गीकरण हम करें। जब उसे वो सम्यक चारित्राधिकार कहेंगे तो चूंकि पहले अधिकार में प्रमाण व्यवस्था का वर्णन है, ज्ञान का वर्णन है, इसलिए उसे ज्ञान तत्व अधिकार कहना स्वाभाविक ही है। और जब पहले अधिकार को ज्ञान तत्व अधिकार कह दिया और अंतिम अधिकार को चारित्र अधिकार शब्द कह दिया, तो बीच का जो गे तत्व प्रज्ञापन है उसे सम्यक दर्शन अधिकार नाम दिए जाने के अलावा और क्या उपाय रहता था, इसलिए उन्होंने उसका नाम सम्यक ज्ञानाधिकार रखा। जबकि आचार्य उमा स्वामी ने जब वर्गीकरण किया है तो उनने क्रम ऐसा रखा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। लेकिन इस प्रवचन सार की टीका में उनने सम्यक ज्ञान को पहला अधिकार नाम रख दिया, पहले उसकी व्याख्या करना उचित समझा, और दूसरे अधिकार को सम्यक दर्शन अधिकार नाम दिया। वो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक अपने ग्रंथ में भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि श्रद्धान होने के पहले ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अज्ञात का श्रद्धान तो गधे के सींग के समान होता है। जानना पहले जरूरी है वस्तु के स्वरूप को, इसलिए उन्होंने जानने की बात को महत्व देकर ज्ञान को पहले और श्रद्धान को बाद में, और बाद में चारित्र की बात की है। ऐसा उन्होंने बार बार मोक्षमार्ग प्रकाशक में उल्लेख किया है। और वो जो दर्शनाचार्य की विधि है वो प्रवचन सार की तात्पर्य वृत्ति टीका में पाई जाती है। तो इस तरह से इस ग्रंथादिराज पर दो महान टीकाएं लिखी गई, एक आज से 1000 वर्ष पहले आचार्य अमृतचंद्र ने तत्व प्रदीप का नाम की टीका लिखी, और दूसरी उसके 300 वर्ष बाद और आज से लगभग 700 वर्ष पहले आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी। आत्मख्याति यदि प्रौढ़तम कृति है, जिसे हम कुछ लोग जटिल नाम से भी कहते हैं कि जटिल है, कठिन है, बहुत मुश्किल है, लोगों के इसी तकलीफ को ध्यान में रखकर जयसेन ने वो तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी। और वो बार बार तात्पर्य वृत्ति नाम से भी आप जान सकते हैं कि वो कहते तात्पर्य है कि, तात्पर्य है कि, हर बात को वो कहते हैं तो उसका तात्पर्य माने निष्कर्ष हर गाथा का वो प्रस्तुत करते हैं। वो तो 49 निकाय में तो यहां तक लिखते हैं कि हर ग्रंथ का सूत्र तात्पर्य अलग होता है और शास्त्र तात्पर्य अलग होता है। प्रत्येक जो गाथा है उसका तात्पर्य अलग होता है और पूरे ग्रंथ का तात्पर्य अलग होता है। तो प्रत्येक गाथा का तात्पर्य उसी गाथा में बता दिया जाता है, ऐसा वो खुद लिखते हैं। यानी वो ये महसूस करते हैं कि जिस गाथा का हम अर्थ करें उसका तात्पर्य हम वहीं बता दें। और पूरे ग्रंथ का तात्पर्य क्या है, तो उनका वितरागता की प्राप्ति होना, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना, सम्मत ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होना, वो तो सभी शास्त्रों का एक तात्पर्य है। तो इस तरह उन्होंने उसका नाम तात्पर्य वृत्ति रखा। और वो अपने हर वाक्य का हर ग्रंथ में एक, और दूसरी उनने इस बात का अनुभव किया कि जो आत्मख्याति में कहा गया है वो बात 100% सत्य होने पर भी नए विभाग से कही जाने पर भी हर जगह नयों के नाम का उल्लेख नहीं किया है, जिससे बहुत से लोगों को भ्रम हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी तात्पर्य वृत्ति टीकाओं में, चाहे वो समय सार की हो, चाहे वो प्रवचन सार की हो, चाहे वो पंचास टीकाएं की हो, इन तीनों टीकाओं में हर जगह नए विभाग से बात खोलने की कोशिश की है। ये बात निश्चय नए से है, ये व्यवहार नए से है, ये उपचेत व्यवहार नए से है, ये अनुपचेत व्यवहार नए से है, ये सद्भूत व्यवहार से है, असद्भूत व्यवहार से है, ये अशुद्ध निश्चय नए से है। इन नयों का उन्होंने खुलासा किया है। इसलिए नए विभाग को जानना हो तो जयसेन की तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपनी टीकाओं को बाल बोधनी टीकाएं कहते हैं, इसलिए उन्होंने उसमें अन्वय की विशेषता रखी है कि वो प्राकृत का शब्द लिखते हैं तो उसका संस्कृत में बताते हैं, उसकी व्याकरण से व्युत्पत्ति सिद्ध करते हैं उसका ये अर्थ कैसे होता है, और एक एक शब्द का एक एक वाक्य का अर्थ बताते चले जाते हैं। जबकि अमृतचंद की टीकाओं में ऐसा कुछ नहीं किया है, वो तो उस गाथा के भाव को अपने हृदय में पूरी गहराई से समाहित कर लेते हैं और फिर अंदर से विशुद्ध तर्कसंगत शैली में उत्कृष्टतम भाषा के प्रयोगों के साथ लंबे लंबे वाक्यों के द्वारा और अपनी बात को श्रोताओं के सामने रखते हैं। ऐसा लगता है कि उनके जो श्रोता हैं वो बहुत ही प्रबुद्ध हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि इस नए का कथन है, वो अपने आप उसमें से नए निकाल लेते हैं, व्याकरण को समझते हैं, वो व्याकरण बताना कि कैसे शब्द की व्युत्पत्ति बनी है वे आवश्यकता नहीं समझते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है और है भी कि बीच बीच में भाषा पढ़ाने लगना, बीच बीच में न्याय पढ़ाने लगना, व्याकरण और न्याय पढ़ाने लगना, तो जो हमारा विषय वस्तु का प्रतिपादन है उसमें बाधा खड़ी होती है। उसको वो बाधक जानकर अब वो अपनी बात को सीधी न्याय की भाषा में व्यक्त करते हैं। और ये बात आप भी सोचिए कि हम किसी विषय को समझा रहे हैं कि आत्मा किसे कहते हैं, सम्मा दर्शन किसे कहते हैं, और उसमें फिर उसका पूरा व्याकरण समझाने लग जाएंगे, इसमें ये अण संधि हो गई है, इसमें ये समास लग गया है, इसमें ये प्रत्यय लग गया है, यदि उसमें विस्तार में चले जाए तो वो एक तरफ रखा रह जाएगा और व्याकरण शुरू हो जाएगी। ऐसे हम पढ़ाने लग जाए कि नए चार प्रकार के होते हैं कि दो प्रकार के होते हैं तो न्याय शास्त्र खुल जाएगा, तो वो विषय वस्तु तो रह जाएगी ना। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि यदि जिनकी समझ में नहीं आता है तो न्याय व्याकरण थोड़ा वो पहले पढ़ के आए और फिर मेरी कृतियों को पढ़े। तो ऐसे श्रोताओं के लिए सामग्री उन्होंने प्रस्तुत की, तो ऐसे भी श्रोता थे कि जो न्याय और व्याकरण में कच्चे थे। ऐसे श्रोताओं की जो विषय वस्तु को समझने की कमी रह गई थी उसके लिए जयसेन आचार्य ने तात्पर्य वृत्ति नाम की टीकाएं लिखी। इसलिए ये टीकाएं उनकी प्रतिद्वंदी टीकाएं नहीं है बल्कि उनकी पूरक टीकाएं हैं। और इसलिए हमें यदि प्रवचन सार को गहराई से समझना है तो हमें तत्व प्रदीप का नाम की जो अमृतचंद की टीका को भी पढ़ना होगा और साथ में तात्पर्य वृत्ति नाम की जयसेन की टीका को भी गहराई से पढ़ना होगा, तब पूरी तरह प्रवचन सार हमारे ख्याल में आएगा। तो अपन ने ये बात की थी कि प्रवचन सार को तीन महाअधिकारों में बांटा गया है, जिसे जयसेन कहते हैं सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शनाधिकार और सम्यक चारित्राधिकार, और आचार्य अमृतचंद कहते हैं ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, गे तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूलिका। तीन अधिकारों के मात्र नामों में ही अंतर है, विषय वस्तु में तो कोई अंतर है नहीं। इस प्रवचन सार ग्रंथ को जब हम आरंभ करते हैं तो जैसे कि समय सार में सिर्फ एक ही गाथा में मंगलाचरण किया है, अबंधित्व शब्द सिद्धे कहकर अकेले सिद्धों को स्मरण किया, यहां तक कि अरहंतों को भी याद नहीं किया, और जो उनके ग्रंथ हैं उनमें भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। लेकिन प्रवचन सार ग्रंथ एक ऐसा है कि जिसमें वे भगवान महावीर को याद करते हैं सबसे पहले, जो अभी अपन ने मंगलाचरण पढ़ा था ना कि एस सुरासुर मनुसिंद बंदिदम घोई घाई कम्य मलम पड़वामी बद्धमानम तिथम धम्मस्य करतारम, के जो सुर असुर और मनुष्यों के इंद्र माने चक्रवर्ती इनके द्वारा बंदनीक हैं, घोई घाई कम्य मलम जिन्होंने घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, धो डाला है, ऐसे धर्म तीर्थ के कर्ता बद्धमामम परमामी मैं वर्धमान भगवान को नमस्कार करता हूं। सबसे पहले उन्होंने वर्धमान भगवान को नमस्कार किया। जरा हम थोड़ा विचार करें इस मंगलाचरण की गाथा पर, ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वे इस ग्रंथ को प्रवचन का सार कहते हैं। तो किसके प्रवचन का सार है? आदिनाथ के प्रवचन का सार है कि महावीर के प्रवचन का सार है? वैसे तो 2400 ही तीर्थंकर अपनी वाणी में एक ही बात को कहते हैं, इसलिए सभी तीर्थंकरों की वाणी का सार है। लेकिन सवाल यह है कि अभी शासन किनका चल रहा है? वो कहते हैं कुंदकुंद आचार्य कि मुझे जो प्राप्त हुआ है वो किनसे प्राप्त हुआ है ये प्रवचन सार? तो ये नहीं कहते मुझे श्री मंदिर परमात्मा से प्राप्त हुआ है, वो ये नहीं कहते मुझे आदिनाथ से प्राप्त हुआ है, कहते भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि जो खिली थी उनका जो प्रवचन हुआ था गौतम गणधर की उपस्थिति में, स्वयंद्रों की उपस्थिति में, उनकी परंपरा से चलकर तो अविच्छिन्न परंपरा है, वो मेरे तक आया है वो ज्ञान, इसलिए वो सबसे पहले, क्योंकि उनकी वाणी का सार है तो जिनकी वाणी का सार है उनको याद उन्होंने किया। अब दूसरा प्रश्न इसमें ये खड़ा होता है कि जब कुंदकुंदाचार्य देव ने वर्धमान भगवान को नमस्कार किया तब तो वे सिद्ध हो चुके थे इस पहल जी, और ये कहते हैं घोई घाई कम्य मलम कि धो डाले हैं घातिया कर्म जिन्होंने, तो अघातिया कर्म नहीं धोए उन्होंने, कर्म मल को धो डाला, ऐसा ही कहते हैं आठ ही कर्म जिन्होंने नष्ट कर दिए। क्योंकि जब इनने उन्हें नमस्कार किया, जब प्रवचन सार लिखा, तब तो वे सिद्ध अवस्था में विराजमान थे। लेकिन वो स्पेशल इस बात पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कि मैं वर्धमान भगवान को जो नमस्कार कर रहा हूं तो उन वर्धमान को नहीं कि जो आज सिद्ध दशा में प्राप्त हैं, बल्कि जो आज से तो 2500 बरस पहले और उनके जमाने से 500-600 बरस पहले अरहंत अवस्था में विद्यमान थे और जिनके प्रवचन हो रहे थे, जिनकी दिव्य ध्वनि खिल रही थी, मैं उन वर्धमान भगवान को नमस्कार करता हूं। उस पर्याय के साथ अपना संबंध जोड़ने के लिए ये पर्याय की क्या बात क्यों आती है बीच में? भगवान महावीर की अकेली इतनी बात रहने दो ना, कहते नहीं आती है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना कि तुम मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण ले हाथ, मेरा माथा तो तुम्हारे सामने जब नवेगा कि जब तुम धनुष बाण लेके आओगे। जैसे रामचंद्र जी का है ना, उनके यहाँ वो धनुष बाण लेकर के हैं और श्री कृष्ण का मुरली बजाते हुए मंदिर में मूर्तियां विराजमान की जाती हैं और राम की धनुष बाण के साथ में, ये कह करके वो क्या कहना चाहते हैं? ये कोई बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं तुलसीदास जी। वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि भैया अभी हमें नचैया गबैयों की जरूरत नहीं है, ये नाचने गाने वालों की जरूरत नहीं है, ये मुरली बजाने वालों की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो धनुष बाण वाले चाहिए। क्योंकि उनका समय वो था जब मुसलमान लोग उन्होंने आक्रमण इस देश पर किया था और मंदिर और मूर्तियां तोड़ी जा रही थी। अब ऐसे में तुम्हें नाच गानों के प्रोग्राम दे देकर सबको नचाना गाना सिखाना चाहते हो, ये तो हमारे शोक का काल है, ये तो धनुष बाण लेकर उन शत्रुओं को पराजित करने का काल है। तुलसीदास को जरूरत धनुष बाण वाले राम की है, जो इन मलोच्छों से हमारी संस्कृति की रक्षा कर सके, ये नाचने गाने वालों की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि तुलसीदास को हे श्री कृष्ण तुम्हें नमस्कार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा कपड़े बदले आओ, धनुष बाण लेके आओ और मुरली को रख के आओ। विद्वान तो तुम बहुत अच्छे हो, बातें तो हमें तुमसे ही सीखनी है, लेकिन नाच गाना नहीं सीखना है, हमें आत्मा परमात्मा की बातें सीखनी है। हमने तुम्हें बुलाया था आत्मा परमात्मा की बात सुनने समझने के लिए, और तुम हमें नचाने लग गए, तुम हमें गाना सुनाने लग गए, तुम हमें गले से रिझाने लग गए। तो वो कहते हैं कि हमें वर्धमान तो चाहिए, लेकिन धर्म तीर्थ के कर्ता वर्धमान चाहिए। हमें मूक केवलियों को स्मरण नहीं कर रहे, वो जो सिद्ध है जिनका हमारा सीरस, जिनके प्रवचन का सार ये प्रवचन सार है, ऐसे वर्धमान को भले ही वे आज सिद्ध हो गए हैं, लेकिन जब उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही थी उनने उनके उस रूप को याद किया। परमाम वर्धमानम तीर्थम धम्मस्त कत्तारम, धर्म तीर्थ के कर्ता वे वर्धमान जिनने घातिया कर्म को धो डाला है, और जो सुर असुर और नरेंद्र इन तीनों के द्वारा बंदनीक हैं, सुरपति उरग नरनाथ तिन कर बंदनीक सुपद प्रभा, ये इसी पंक्ति का अनुवाद है। सारा जगत जिनको मानता है, सौ इंद्र है ना, तो सारे जगत के ये प्रतिनिधि हैं, तो इनने उन्हें नमस्कार कर लिया, इनने मान्यता दे दी, तो इसका अर्थ है सारे जगत में मान्यता दे दी। प्रधानमंत्री ने साइन कर दिए किसी समझौते पर, तो भारत ने साइन कर दिए, हमारे 100 करोड़ लोगों ने साइन कर दिए, मान लिया जाता है ना। इस तरह 100 इंद्रों ने जिनको नमस्कार किया, माने जो सर्वमान्य हैं, ऐसे धर्म तीर्थ के कर्ता, चार घातिया कर्मों से रहित, अरहंत अवस्था में विराजमान वर्धमान भगवान को इसलिए उन्होंने नमस्कार किया, क्योंकि यह प्रवचन सार उनके प्रवचन का सार है। दूसरी बात, 5 गाथाओं में उनने मंगलाचरण किया, और ग्रंथों में एक गाथा से दूसरी गाथा पर बड़े ही नहीं है। फिर उन्होंने, आपको लगेगा कि भैया के लिए वर्धमान से क्या मतलब, तो उन्होंने कहा बाकी के तीर्थंकरों को से पुण्य तीर्थ रे, बाकी के तीर्थंकरों ने भी मैं करता हूं, तो सद्भाव वाले सिद्ध भगवान में उन्हें भी करता हूं, ज्ञान दर्शन चारित्र से संपन्न जो आचार्य महाराज हैं हम उन्हें भी नमस्कार करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और जो अपने को प्राप्त करने वाले हैं, जो मनुष्य क्षेत्र में रहने वाले हैं, मनुष्य क्षेत्र में रहने वाले अरहंतों को कहकर श्रीमंदरादिक को भी याद कर लिया। मान से क्षेत्रे, लिखा ना मान से क्षेत्रे अरहंते बठंते, जो अभी वर्तमान में मनुष्य क्षेत्र में रहते हैं वो अरहंत, क्योंकि महावीर वर्तमान में मनुष्य क्षेत्र में नहीं रहते। अरे श्रीमंदर परमात्मा को भी याद कर लिया, 20 तीर्थंकरों को भी याद कर लिया, यदि 170 हो अभी वर्तमान में तो 170 तीर्थंकरों को भी याद कर लिया। कहते हैं अजितनाथ के काल में 170 तीर्थंकर एक साथ विद्यमान थे, 20 तो कम से कम हमेशा रहते ही। तो इस समय जितने भी जहां हो उनको भी याद कर लिया, लेकिन गौण रूप से, मुख्य रूप से उन्होंने वर्धमान तीर्थंकर को याद किया, और उसके बाद उन्होंने अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को गणधर शब्द का प्रयोग किया आचार्यों के लिए, उपाध्यायों से साधुओं को जो नमस्कार मंत्र में, सबको नमस्कार किया, और अंत में ये कहते हैं कि मैं इन सबको नमस्कार करके अब अपनी जो निर्वाण की संपत्ति है उसको प्राप्त करने का जो असली कारण साम्य भाव है उसको प्राप्त होता हूं। तो इसमें मंगलाचरण में भी विशेषता है कि उनने बुद्धि पूर्वक भगवान महावीर की वाणी से अपने को जोड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय कुंदकुंदाचार्य देव विदेश क्षेत्र से होकर के तो आई गए थे, उनकी ये प्रौढ़तम कृति है, तो लोग उन्हें बार बार श्रीमंदिर परमात्मा के यहां से जो उनकी दिव्य ध्वनि सुन के आए हैं, ऐसे कुंदकुंद स्वामी, ऐसे कुंदकुंद स्वामी बार बार कहते होंगे। कोई जरा सी भी बात हो जाती दुनिया की आदत होती है कि नहीं, और मेरे साथ देश विदेश में प्रख्यात, क्या हो गया देश विदेश, विदेश से क्या मतलब हो गया, विदेश में घूमे आए तो क्या हो गया, वहां भी 4 बातें सुना आए, और नहीं जाते यदि विदेश में व्याख्यान देने तो पंडित हुकुमचंद छोटा पंडित रह जाता नहीं, लोग तो रोजाना 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 उस बात को याद करेंगे जहां 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 जहां। तो ऐसे ही श्रीमंदर परमात्मा विदेह में होके आए थे, विदेश से तो विदेह की महिमा बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि विदेह में तो श्रीमंदिर परमात्मा विराजमान थे, विदेह में क्या है, विदेश में क्या है, कुछ नहीं। वहां तो सुनाने जाते हैं, पर वहां तो वे सुनने गए थे, क्यों जगन मल जी साक्षात अरहंत परमात्मा के दर्शन करके आए थे, तो वो तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। तो उस बात को लोग याद नहीं करते होंगे, कैसे हो सकता है। तो उनको ये लगने लग गया था कि यदि मैंने इस बात को खोल के नहीं कहा तो लोग मुझे श्रीमंदिर परमात्मा की वाणी में उन्हें सुनाता हूं यही मान के बैठ जाएंगे मैं भगवान महावीर की। लेकिन वे अपने को बुद्धिपूर्वक भगवान महावीर की परंपरा से जोड़ना चाहते थे और उन्होंने जोड़ा। क्यों, उसमें क्या खराबी थी? उसमें एक खराबी थी कि फिर हर एक आदमी कहता कि हमें तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं, और उसके अंदर हीन भावना पनपती। लेकिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का सार तो जैसा मुझे प्राप्त है वैसा सबको प्राप्त है, परंपरा गुरु की परंपरा से। दूसरी बात यह होती कि भविष्य के लोग कहते कुंद कुंद इसलिए प्रमाण है कि श्री मंदिर के पास सुन के आए थे, तो और आचार्यों की प्रमाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। तो भूत बलि प्रसन्न तो गए नहीं थे, जिनसेनाचार्य तो गए नहीं थे, समंत भद्र तो गए नहीं थे, तो उनकी बात को हम कैसे प्रमाण माने। वो नहीं चाहते थे कि मेरी इस व्यक्तिगत उपलब्धि के कारण जिनवाणी में प्रमाणिकता का प्रश्न खड़ा हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस बात को मानते थे कि ये मेरा परम सौभाग्य है, ये मेरी बिल्कुल प्योर व्यक्तिगत बात है कि मुझे श्रीमंदिर परमात्मा के दर्शन प्राप्त हुए। इससे पूरी जो भगवान महावीर की आचार्य परंपरा है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, मैं गया होता तो और नहीं गया होता तो भी। क्यों, मैं विदेश नहीं जाता तो आप लोगों के लिए कम उपयोगी था, और गया तो ज्यादा उपयोगी हो गया, कि दो महीने का और नुकसान हो गया, बोलो। तो ऐसे ही वे श्रीमंदिर परमात्मा के पास नहीं जाते तो हमारी कोई हानि हो जाती, तो क्या कुंद कुंद से हमें कुछ कम माल मिलता, ऐसा नहीं है। माने वो है तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन वो इस बात से नहीं जोड़ना चाहते हैं कि हम हर बात को उस बात से जोड़ें। इसलिए उन्होंने पूरा वर्धमान स्वामी से अपनी बात को जोड़ करके और प्रवचन सार को लिखने की प्रतिज्ञा की। इस तरह पांच गाथाओं के मंगलाचरण के बाद वे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को शुरू करते हैं। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को भी उन्होंने चार भागों में बांटा। तीन तीन तो इसके महाअधिकार हैं, कौन कौन, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, गेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानि योग चूलिका। फिर ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार को उनने चार भागों में बांटा। चार भागों में पहले भाग का नाम रखा शुद्धोपयोग अधिकार, दूसरे का नाम रखा ज्ञानाधिकार, तीसरे का नाम रखा सुखाधिकार और चौथे का नाम रखा शुभ भावाधिकार। अब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ऐसे अधिकारों का क्या औचित्य है, तो ये देखो छठवीं गाथा में वो प्रतिज्ञा की उनने कि मैं तुमको मुक्ति के मार्ग की बात बताऊंगा। जो सातवीं गाथा से वैसे बारहवीं गाथा तक उन्होंने शुद्धोपयोग अधिकार आरंभ नहीं किया, ये उसकी भूमिका है। जैसे समय साल में बारह गाथाओं में बात कही ना, पांच गाथाओं में मंगलाचरण के बाद में वो जो बहुत प्रसिद्ध गाथा प्रवचन सार की है कि चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोतिने दिथो मोहखो है बिहीनो सामो अप्यणो समो चारित्रम खलु धम्मो के चारित्र ही निश्चय से वास्तव में धर्म है। ये जो कुंद कुंद की गाथा है इसको कुछ लोग उस पर लगा के रखते हैं, ऐसे चाहत ही धर्म है, चाहत ही धर्म है, ऐसा मानकर कि जैसे हम चारित्र को नहीं मानते हैं और हमें सिखाना चाहते हैं कि भाई वास्तव में धर्म तो चारित्र है, प्रवचन सार में लिखा है, तुम्हारा सम्मा दर्शन सम्मा दर्शन धर्म नहीं है और तुम तो सम्मा दर्शन के गीत गाते हो। लेकिन एक कुंद कुंदाचार्य ने दर्शन पावड़ में लिखा है कि दर्शन मूलो धम्मो, के दर्शन धर्म का मूल है, मूल माने जड़, तो वो जड़ है। जैसे आम, आम की जड़ और आम, तो आम के पेड़ को तो आम कहते हैं, आम की जड़ को आम नहीं कहते, आम की जड़ कहते हैं। इसलिए कहते हैं सम्मा दर्शन तो धर्म की जड़ है, इसलिए कहते हैं चाय तो धर्म है, तो धर्म पे चात नाम वृक्ष का हो गएगा। देखो जड़ जमीन के भीतर रहती है और वृक्ष ऊपर होता है, तो वृक्ष सारे जगत को दिखाई देता है और वृक्ष के फल फूलों से और छाया से सारा जगत को लाभ मिलता है, मिलता क्या नहीं। लेकिन जड़ तो जमीन के अंदर रहती है, वो किसी को दिखाई भी नहीं देती है और सीधा उससे लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन वो जड़ नहीं होए तो तना खड़ा रह सकता है, जड़ नहीं हो तो फल फूल सकता है। और आप ये जानते हैं कि जितना तने का विस्तार होता है उसी अनुपात में नीचे जड़ों का विस्तार होता है। यदि ऊपर एक शाखा ऐसी इधर को गई है 10 फुट तक, तो नीचे की जड़ भी उसी दिशा में, शाखा की दिशा में, और उतनी ही दूर तक, लगभग उतनी ही दूर तक जाती है, तब वो जाके बैलेंस बन के वहां टिक सकती है, नहीं उसके बोझ से पेट टेढ़ा हो जाएगा। जितनी जितनी शाखाएं चारों तरफ फूटती हैं उतनी उतनी चारों तरफ नीचे जड़ें फूटती हैं। जो लंबा लंबा जाएगा पेड़, उसकी जड़ भी नीचे को लंबी लंबी जाएगी। जो ऐसा फैलेगा उसकी जड़ें भी ऐसी ऐसी फैलती हैं। बिल्कुल नीचे जैसे ऊपर तना फैला हुआ है, ऐसे नीचे जड़ों का जाल फैला हुआ है और उससे वो सब टिका है। न केवल टिका है, खड़ा है, बल्कि पराग भी वो जड़ों से ही लेता है। उसका जो पत्ते जो हरे भरे हैं वो जड़ की कीमत पर है, जड़ों से ले लेकर के। ऐसे चारित नामक वृक्ष है, उससे लोगों के फल भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे और छाया भी मिलेगी। सम्मा दर्शन तो दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन जितना सम्मा दर्शन निर्मल होगा, सहायक होगा, पूर्ण होगा, चारित्र का वृक्ष उतना ही पनप पाएगा, उतना ही विस्तृत प्राप्ति को प्राप्त हो पाएगा। यदि यहां कमजोरी है तो वहां पैदा होने का सवाल ही नहीं। जड़ के बिना वृक्ष की जैसे कल्पना नहीं की जा सकती है, तो इसलिए ये उसके विरुद्ध बात नहीं है कि चारित्रम खलु धम्मो कहा है तो सम्मा दर्शन के कोई विरुद्ध बात हो गई है, कि जनसमय मूलो धम्मो कहा है तो चारित्र के कोई विरुद्ध बात हो गई है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दो पार्टियां नहीं है, बल्कि मुक्ति के मार्ग के दोनों एक ही मार्ग है, और तीनों का मिलकर मार्ग है ना, तीनों का मिलकर एक मार्ग है, अलग अलग नहीं है। लेकिन वो यहां कहते चारित्रम खलु धम्मो, जो लोग चारित्रम खलु धम्मो का नारा लगाते हैं और हमसे कुछ कहना चाहते हैं, उन लोगों का अर्थ चारित्र के संदर्भ में बाहर के क्रियाकांड से ही होता है। ये नहीं है तुम में और ये हम में है। लेकिन आचार्य कुंदकुंद ये बात कहने के साथ तत्काल उस चारित्र की जो धर्म है उसकी व्याख्या करते हैं कि धम्मो जोसो समित्तु निदिष्ठो, कि चारित्र धर्म है। तो प्रश्न खड़ा हुआ धर्म क्या है, कि जो सम है, समता भाव है, समता भाव है, उसका नाम है धर्म। तो फिर कहते हाँ समता भाव तो हम में बहुत है, हमें तो चार गालियां सुना जाते हैं तो अभी हम ग्राहक से कुछ नहीं कहते हैं और हम तो हाथ जोड़ते रहते हैं। तुम अपने मन का अर्थ समता भाव का नहीं लगाओ। इसलिए आचार्य देव ने खुद ही उस समता भाव का अर्थ भी किया, मोह खोह विहूणो परिणामो अपणोहु समो, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को समता भाव कहते हैं। मोह खोह विहीणो, मोह और क्षोभ इससे रहित आत्मा के परिणाम को क्या बोलते हैं। देखो अब मोह कहा तो मोह में दर्शन मोह नहीं आ गया क्या नहीं, और क्षोभ में तो देश आता है मुख्य रूप से, राग भी आ गया। तो मिथ्यात्व और राग देश इन तीनों से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम साम्य भाव है। तो साम्य भाव है धर्म और धर्म है चारित्र। तो उसमें सम्य दर्शन आया कि नहीं आया, बोलो सम्य दर्शन को छोड़ दिया क्या उनने, अकेला वो राग देश विहीनो परिणामो अपणोहु समो ऐसा लिखते तो कदाचित हम कह देते कि वो चायत्र मोह को ही लिया है, दर्शन मोह को नहीं लिया है, है ना। जब उन्होंने मोह खोए भी नो लिया है, तो खोए माने देश, अगला देश नहीं होता है। क्षोभ माने क्षोभ राग से भी होता है और देश से भी होता है। तो क्षोभ माने राग देश दोनों, और मोह माने दर्शन मोह माने मिथ्या। मोह खोह विहीनो परिणामो अप्रणो, जो आत्मा का परिणाम है, माने कि देह की क्रिया नहीं, जड़ की क्रिया नहीं, और राग देश रूप क्रिया नहीं, मिथ्यात्व भाव रूप क्रिया नहीं, इनसे रहित जो आत्मा का निर्मल परिणाम है, माने श्रद्धा गुण का निर्मल परिणाम सम्यक दर्शन, ज्ञान गुण का निर्मल परिणाम सम्यक ज्ञान, और चारित्र गुण का निर्मल परिणाम सम्यक चारित्र, इसका नाम है साम्य। यह धर्म और यह साक्षात धर्म है। तो यहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही धर्म घोषित किया है। रत्नगण साहब का चार में भी कहा ना, है ना, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराभिदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सदृष्टि माने सम्यक दर्शन, सद्ज्ञान और वृत्त माने चारित्र। धर्मम धर्मेश्वराभिदु, धर्म के ईश्वर ने इन्हें धर्म कहा है। तीनों को कहा गया, एक को राव कुंद कुंद चारित्रम खुल धम्मो लिखते। तो समंत भद्र कुंद कुंद में भी झगड़ा था, क्यों कि वे तीनों को धर्म लिखते हैं है? और ये एक को धर्म लिखते हैं। तो मोह खोए विहीनो लिख दिया तो तीनों ही आ गए। तो अकेला चारित्र को ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि वो चारित्र ऊपर से दिखाई देता है, श्रद्धा अंदर से दिखाई नहीं दे रहा। चरित्र वो बस लेना संयम पैसो नाथ जजे हैं, तो बाहर से क्या दिखा। एक चक्रवर्ती को छाया सम्मान दर्शन हो गया, अब बाहर से तो कुछ दिखता नहीं, वो तो श्रद्धा अंदर में पर पदार्थों से हटकर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हो गई, और उसने ये मान लिया कि ये मैं हूं। अब ने राज काज छोड़ा नहीं, 98,000 पत्नियों में से एक को भी छोड़ा नहीं, दिग्विजय करने के लिए जा रहे हैं, तो इस सारे लोक को कैसे दिखेगा ये धर्मात्मा है। यदि वो श्रद्धा को ही अकेले को धर्म घोषित कर देते, क्यों तो फिर उस विषय कषाय में लिप्त लोगों को भी धर्मात्मा कह दिया जाता। जादू तो वो है जो सिर पर चढ़कर बोले। तो चारित्र एक ऐसी चीज है कि वो सारे जगत को दिखाई देती है, मैं सम्यदृष्टि हूं कि नहीं, इसकी घोषणा करने की जरूरत पड़ती होगी। क्यों, कोई ने नग्न दिगंबर मुन दीक्षा ले ली तो उसे कहने की जरूरत है कि मैं छठवें सातवें गुण स्थान में हूं। वो है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये बेस ही इस बात की घोषणा है कि वो ये मान रहा है, ये कह रहा है कि मैं क्या हूं। बोलो, है ना अन्ना जी, ये बेस इस बात की घोषणा है कि नहीं। तुम अपने को सम्यदृष्टि कहते, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तो तुम कह रहे अपने को मनी, तुम्हें नहीं आती शर्म, हम कहां कहें, हम तो कहीं नहीं। अरे बेस लिया, ये पिछली कमंडल लिया, इसका मतलब 24 घंटे ही कह रहे हैं, हम तो कभी कभी कहा होगा। छबरा जी वो बेस ही इस बात का प्रतीक है, वो घोषणा है, इसलिए उन्होंने ये घोषणा की कि ऐसा जो मूल क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम है, उसका नाम वास्तव में धर्म है। और वो कहते हैं कि जो देखो इसमें जो वो जिस उस परम धर्म है, उस पर्याय को कहा, सम्मदर्शन ज्ञान चातुरूप पर्याय को। आत्मा तो त्रिकाल ही है, अकेले त्रिकाली आत्मा को धर्म कहते तो निगोद में भी आत्मा को धर्मात्मा कहते ना, लेकिन नहीं कहते। निगोदिया को धर्मात्मा नहीं कहते, नहीं कहते ना। और सिद्ध को धर्मात्मा कहते हैं, मुनिराजों को धर्मात्मा कहते हैं, सम्मदर्शियों को धर्मात्मा कहते हैं। तो इसका मतलब धर्म शब्द धर्मात्मा शब्द पर्याय की अपेक्षा है, द्रव्य की अपेक्षा नहीं। तो बहुत लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, देखो इसमें लिखा है, पर्णवती जेण दब्बम तक कालम तम मयति पर्णतम, आठवीं गाथा, तम्मा धम्म पर्णदो आदा धम्मो मुड़े दब्बो। कि जो द्रव्य जिस समय जिस पर्याय से परिणमित होता है, उस समय वह वही होता है। क्या कह रहे, जो ईंधन है वो अग्नि से जल रहा है, तो जलता हुआ ईंधन ईंधन नहीं है, अग्नि ही है। उसे बोलते आग है, दूर रहो आग है, जल जाओगे, बोलते कि नहीं बोलते। तो जिस पर्याय से जो परिणमित है उससे वही है। धर्मेण पर्णदप्पो अप्पा, धर्म से परिणमित आत्मा स्वयं धर्म है। धर्म है माने धर्मात्मा है। तो धर्मात्मा शब्द कहने से भी धर्म अलग लगता है और आत्मा अलग लगता है। वो तो क्या कहते हैं, वो धर्म से परिणमित आत्मा ही धर्म है। सम्यक दृष्टि आत्मा ही धर्म है, सम्यक दर्शन धर्म है और आत्मा अलग है। और उस धर्म के कारण वो आत्मा धर्मात्मा बना है, वो ऐसा नहीं है। कहते हैं कि धर्म से परिणमित आत्मा भी धर्म है। ऐसा देखो क्या शब्द है, तम्मा धम्म परिणदो आधा धम्मो मुड़े दब्बो। तब धर्म से परिणमित आत्मा ही धर्मात्मा है। और धर्म क्या है, चारित्र। क्यों चारित्र दिखा ना, चारित्र मूल धर्म। चारित्र माने मोह खोए बिहीनो अपनो समो, माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ये तीनों। और इन तीनों से परिणमित आत्मा ही धर्मात्मा है। धर्मात्मा नहीं साक्षात धर्म है। न धर्मो धर्म कई बिना, लिखा ना सबका चार में कि धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता। उसमें तो ऐसा लगा धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता, यहां तो ये कह रहे कि धर्मात्मा ही धर्म है। उसके अलावा और कौन सा धर्म है। धर्म से परिणमित जो आत्मा है उसे छोड़ दो तो अलग से कौन सा धर्म है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चार धर्म है और आत्मा धर्म नहीं है। तो कहां पाए जाते हैं ये, टोडामल स्मारक में, जयपुर में, सोनगढ़ में, किसी व्यक्ति के। अरे भाई ये कहीं नहीं पाए जाते हैं, ये तो आत्मा में पाए जाते हैं। आत्मा का धर्म तो धर्म से परिणमित आत्मा ही धर्म है। क्यों जी, ईंधन को छोड़कर अग्नि अलग है और ईंधन अलग है, ऐसा माने क्या मोहनलाल जी, तो फिर क्या होगा बताओ। कहीं ईंधन के बिना की कोई अग्नि बताओ। जहां तक आपने अग्नि देखी होगी वो जलती ही देखी होगी, तो ईंधन ही जल रहा होगा ना। यदि उसे ईंधन कहोगे तो फिर अग्नि नाम की कोई चीज जगत में बचती ही नहीं है। जलते हुए ईंधन को भी ईंधन कहोगे तो अग्नि नाम की चीज फिर क्या है, बोलो। तो धर्म से परिणमित आत्मा को धर्म नहीं कहोगे तो फिर धर्म अलग से क्या, वो तो आत्मा ही है, तो धर्म कहां है। तो धर्म से परिणमित आत्मा ही धर्म है, ऐसा उन्होंने कहा। इस तरह देखो, अपन अत्थो अत्थम विनेह परिणाम हो दब्ध गुण पद्य अत्थो अत्थो अत्यति निवृत्थो। कहते परिणाम के बिना द्रव्य नहीं हुआ, द्रव्य के बिना परिणाम नहीं। क्योंकि धर्म को अलग करें, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को अलग कर दें, तो धर्म तो वो सम्मर्शन ज्ञान चातु परिणमन है और उसके कारण आत्मा को धर्म कहा, अगर आत्मा तो धर्म नहीं रहेगा ना। जैसा हम तो यही मानते थे, लेकिन तुम्हें तुमने समझाया है कि त्रिकाली ध्रुव अलग है, वो पर्याय से भिन्न है, पर्याय से भिन्न है, पर्याय से भिन्न है। अब आज ये कह रहे हो कि तुम जरा ज्यादा समझ गए ना, वो इसलिए आज ये कहने की जरूरत पड़ रही है कि बोध पर्याय और द्रव्य क्या। अच्छा जाने दो, वो तो बहुत दूर की बात है। देह है ना, ये देह और आत्मा। इस संसार में जीव को देखना है तो देह और आत्मा देह में ही देखना पड़ेगा। देह तो बिल्कुल जुदा है, वो तो पुद्गल है, जड़ है, और आत्मा उससे बिल्कुल झुंड है। लेकिन हमको जितने जीव दिखाई देते हैं वो देह में ही दिखाई देते हैं। उन्हें देही बोलते हैं, देही जीव को भी देही बोलते कि नहीं बोलते। असिद्ध भगवान है देह के बिना, तभी तो हमारे ज्ञान के बनने वाले नहीं है। तो ये तो कदाचित देह और आत्मा तो अलग हो जाता है और स्वभाव से तो बिल्कुल भिन्न है ही। ऐसा पर्याय और द्रव्य ऐसा भिन्न नहीं है, वो तो सिद्ध अवस्था में भी विजुदे होने वाले नहीं है, एक समय भी जुदे होने वाले नहीं है, इकट्ठे ही रहने वाले हैं। फिर भी हमारे ज्ञान के द्वारा उन्हें जुदा जुदा जाना जा सकता है, जाना जाता है, इसलिए जुदे कहते हैं। और हमें दृष्टि हटा दो, माने उस पक्ष पे से वो वहां से बात नहीं हटेगी, पर्याय नहीं हटेगी, वो दृष्टि पर्याय पे से हटा के स्वभाव पर ले जाने की बात है। यदि कोई उसका अर्थ समझ लेता है कि वो उस पर्याय से रहित है तो वो बात गलत है। ये ग्यारहवीं गाथा में बात करके अभी खत्म करूंगा। देखो, धम्मेण परिण दप्पा अप्पा यदि शुद्ध सम्मोप जुदो पावधि निब्बान सुधुम स्वभोग जुत्तो ये सद्य स्वहम। कि धर्म से परिणमित जो आत्मा है, कौन वो सम्मर्शन ज्ञान चात्र वाला आत्मा है, वो दो अवस्थाओं में रह सकता है, एक शुद्धोपयोग की अवस्था में और एक शुभोपयोग की अवस्था में। तो शुद्धोपयोग की अवस्था में जब होगा तो उससे वो निर्वाण सुख को प्राप्त करेगा, और जब शुभोपयोग की अवस्था में होगा तो वो सज्ञ सुहम स्वर्ग के सुख को प्राप्त करेगा। मूल गाथा में तो सज्ञ सुहम लिखा है, इस स्वर्ग के सुख को, सुख ही सुख है, कुछ भी सही, निर्माण मिल जाएगा नहीं तो स्वर्ग का सुख मिल जाएगा, मोक्ष का सुख मिल जाएगा नहीं तो स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। अमृत अन्नाचारी ने कहते हैं कि तेरे मुंह में पानी आ गया है, तो स्वर्ग के सुख की व्याख्या उनने अपनी टीका में की है। जरा देखो बहुत मार्मिक है कि गर्म घी खोलते हुए घी में किसी आदमी को डाल दो और जैसे अपन मंगोड़े पकौड़े बनाते हैं वो खोलने लग जाए तो कितना सुखी होता हो, कितनी ठंडक प्राप्त होती होगी उसे, क्योंकि घी तो ठंडा होता है, घी में डाला है ना। जैसे कहते गर्म घी में डले हुए मनुष्य जिस तरह दुखी होता है, ऐसे ही स्वर्ग सुख में वो भोगों के बीच में पड़ा हुआ आत्मा, नाम है उसका सुख और है वो वास्तव में दुख ही। लिखा देखो, सिखित तप्त घृतोपसिक्त पुरुषो दाहि दुख मिल स्वर्ग सुख बंध मापनोती। घी में तपे हुए पड़े हुए पुरुष के समान वो स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है, ऐसा है वो स्वर्ग। मैं वो तो दुख ही है क्या। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अमृत चंद्र जैसा सशक्त आचार्य नहीं होता तो क्या किसी की ताकत थी कि मूल गाथा में तो लिखा है सज्ञ सोहम कि स्वर्ग सुख को, और वो ऐसा उसका अर्थ करते कि वो वास्तव में सुख है ही नहीं, वो दुख है। हम ये बात का अर्थ कर पाते कि समझ पाते, और उनने कोई अपना अनर्थ नहीं किया है, क्योंकि आगे खुद ही मूल गाथाओं में संसार के सुख का स्वरूप जब किया सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम, वो सारा बताया है कि नहीं, अभी आएगा आगे कि वो कैसा सुख है, उसका सुख का स्वरूप बताया तो कैसा वो दुख रूप है, कुंद कुंद की मूल गाथा में है, उसी बात को उनने यहां लाकर कह दिया। इस तरह इन्होंने 11 गाथाओं में भूमिका की बात की। अब आगे चल करके फिर वो शुद्धोपयोग अधिकार आरंभ करेंगे, लेकिन शुद्धोपयोग अधिकार की भूमिका बांध दी ना कि वो आत्मा धर्मात्मा जब शुद्धोपयोग से प्रणमित होता है तो निर्माण को प्राप्त करता है, जब शुभोपयोग से प्रणमित होता है तो स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो अब जब निर्माण को प्राप्त करता है शुद्धोपयोग अधिकार की बात करेंगे। अब वो सुख कैसा है वो सुखाधिकार में कहेंगे, और स्वर्ग सुख को पाता है वो शुभाव अधिकार में कहेंगे। तो इस तरह इस गाथा में इन्होंने पूरे 92 गाथा तक की विषय वस्तु की तरफ संकेत कर दिया कि हाँ हम आगे किस बात का वर्णन करने वाले हैं।